शान अब एकदम गंभीर लग रहा था। उसकी बात सुनकर सुयश जी ने भी गंभीरता से जवाब दिया, हमारी सालों की मेहनत अब रंग लाने वाली है। सालों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, पार्टी में भी हमारी अच्छी पहचान बन गई है। इस बार टिकट भी हमें मिलेगा और जीत भी हमारी होगी, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। शान के लबों पर शातिर मुस्कान फैल गई। ठीक इसी वक्त वहां अर्पिता जी ने कदम रखा तो दोनों चुप हो गए। अर्पिता जी ने शान को घूरते हुए कहा, आपने उन्हें डांटा, अब जाकर मनाइए उन्हें, नाराज है आपसे और अब न यहाँ आने को तैयार है ना ही खाने के तैयार है, जिद पर अड़ी हुई है, कह रही हैं कि जब तक उनके डैडी उनकी मम्मा को नहीं ले आते वो ना तो कुछ खाएंगी ना ही किसी से बात करेंगी। आप डैड को देख लीजिए, उन्हें खाना खिलाकर दवाई खिला दीजिए, हमारी प्रिंसेस को कैसे मनाना है ये हम देख लेंगे। शान उठकर खड़ा हो गया। अर्पिता जी तो उनसे नाराज थी, उन्होंने मुंह बनाते हुए हामी भरी तो शान वहां से उठकर चला गया। अब अर्पिता जी ने सुयश जी की तरफ निगाहें घुमाई और नाराजगी से बोली, आप उन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं हैं? वो तो जिद पर अड़े हुए हैं कि अपनी जिंदगी बर्बाद करके ही रहेंगे और आप ही उनका साथ देते हैं, उनको रोकने की जगह उनको बढ़ावा देते हैं। क्या मिलेगा इस दुश्मनी को निभाकर? सालों पहले जो हुआ उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को संभाला है, हम इसे दोबारा बिखरते नहीं दे सकते। वो इस दुश्मनी में खुद को भुलाए बैठे हैं, आज भी उनकी जिंदगी वहीं अटकी हुई है जहां आर्यन उन्हें छोड़कर गए थे। ऐसे तो वो अपनी सारी जिंदगी इस दुश्मनी को निभाने में ही बर्बाद कर देंगे। उन्हें तो ना अपनी ज़रूरत दिखती है ना ही उस मासूम सी बच्चे के आंसू नजर आते हैं। हम तो उन्हें कह कहकर थक गए हैं पर वो हमारी सुनते ही नहीं है। एक बार आप कहिए ना उनसे कि शादी कर लें, उन्हें एक साथ ही मिल जाएगा जो उन्हें जीना सिखा देगी और अंशिका को एक माँ मिल जाएगी। हम सारी जिंदगी तो नहीं रहेंगे उनके साथ, अभी तो हम संभाल लेते हैं अंशिका को, पर अगर कल को हमें कुछ हो गया तो कौन संभालेगा हमारी बच्ची को। अर्पिता जी की आंखें झिलमिला गईं, गला भर आया तो वो खामोश हो गईं, माहौल गंभीर हो गया था। सुयश जी खड़े हुए और उन्हें चेयर पर बिठाते हुए बोले, आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं, जानती है ना वो कितने जिद्दी हैं, बचपन से ही तो ऐसे हैं, जब तक वो जो करना चाहते हैं वो करना ले वो पीछे नहीं हटते, और वो कुछ गलत नहीं कर रहे तो हम उनका साथ जरूर देंगे, और फिर वो किसी गलत रास्ते पर भी नहीं चल रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना गलत तो नहीं है। आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए, हमें महादेव पर पूरा विश्वास है, वो उनके लिए एक सुलझी हुई समझदार लड़की भेजेंगे जो उन्हें फिर से जीना सिखा देगी, और उन्हें जब शान की जिंदगी में आना होगा वो खुद ब खुद ही उन तक पहुंच जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, तब तक के लिए हम तो हैं ही उनके पास। अभी अगर हम उन्हें शादी के लिए कहते भी हैं तब भी वो नहीं मानेंगे, इसीलिए हमने सब वक्त पर छोड़ा हुआ है, क्योंकि वक्त से बलवान और कोई नहीं है, जब जो होना होता है हो ही जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। चलिए अब रोना बंद कीजिए और पानी पीजिए। उन्होंने उन्हें पानी पिलाया, अब वो कुछ शांत हो गई थीं। अर्पिता जी ने ट्रे में खाने की प्लेट और जूस का ग्लास रखा और वहां से चली गई। सुयश जी अब शान के आने का इंतजार करने लगे। वहीं शान वहां से निकलकर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा। उसके कमरे के बगल वाले कमरे के गेट पर पहुंचकर उसके कदम रुक गए। उसने कुछ सेकंड बाद दरवाजा खोला और अंदर बढ़ गया। अंदर जाकर देखा तो अंशिका बेड पर मुंह फुलाए बैठी थी, पर वो अब भी बेहद क्यूट लग रही थी। उसके सुनहरे कर्ली बाल खुले हुए थे और कमर तक लहरा रहे थे, जिनमें से कुछ छोटे छोटे बाल उसके प्यारे से चेहरे पर आकर उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। दोनों गाल गुब्बारे जैसे फूले हुए थे और वो आलती पालती मारकर बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी। दोनों हथेलियों को अपने गालों पर रखा हुआ था। उसके बगल में ही छाया बैठी थी और परेशान सी उसे कुछ समझा रही थी। शान को देखते ही वो चुप हो गई। वहीं अंशिका ने उसे देखकर नाराजगी से मुंह घुमा लिया। भैया मैंने बहुत समझाया पर अंशु नहीं मान रही, जिद पर। छाया ने शान को देखकर इतना कहा ही था कि शान ने उसकी तरफ नजरें घुमाई और आंखों से ही बाहर जाने का इशारा कर दिया, तो वो बाहर चली गई। शान आकर अंशिका के पास बैठ गया पर अंशिका ने उसे देखा तक नहीं, यूं ही मुंह फुलाए बैठी रही। शान ने उसके गाल पर से उसकी हथेली हटाई तो उसने वापस रख लिया। उसने दो तीन बार यूं ही किया पर अंशिका नहीं मानी, तो शान ने उसको घूरते हुए कहा, तो आप नहीं मानेंगी? नहीं, अंशिका ने तुरंत ही अकड़ते हुए जवाब दिया। आखिर वो थी तो अपने डैडी की ही बेटी, हर मामले में उसी पर गई थी। उसकी अदा पर शान मुस्कुरा उठा, उसने उसको उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया तो अंशिका उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर शान ने उसको कस के अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हमारी प्रिंसेस तो आज कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई अपने डैडी से। हाँ, बेबी डैडी से टू मच एंग्री है, डैडी बेबी को डांटते हैं, बेबी की विश भी पूरी नहीं करते, बेबी को मम्मा चाहिए, सब बेबी की मम्मा होती हैं बस अंशु की मम्मा नहीं है, अंशु को भी मम्मा चाहिए पर डैडी मम्मा को नहीं लाते, इसीलिए बेबी डैडी से नाराज़ है और अब बेबी डैडी से तब तक नाराज रहेगी जब तक डैडी मम्मा को लेकर नहीं आते, बेबी डैडी से बात भी नहीं करेगी, अंशिका ने मुँह फुलाए हुए ही कहा और उसकी गोद से उतरने लगी तो शान ने उसके गाल पर अपने चेहरे को रगड़ते हुए कहा, अच्छा, तो आप सच में डैडी से नाराज़ हैं? दोबारा कहिए तो ज़रा, कितना नाराज़ हैं आप डैडी से? उसकी हल्की बियर्ड्स थी जिसके चुभने पर अंशिका उससे दूर हटते हुए बोली, नो डैडी, आपकी डैडी बेबी को चुभ रही है। पहले बोलिए कितना नाराज़ हैं आप डैडी से, शान ने अब उसके पेट पर अपने सर को रगड़ते हुए सवाल किया। तो अंशिका गुदगुदी होने से खिलखिलाकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, नो डैडी, दैट्स चीटिंग, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर माई लव, शान ने उसको गुदगुदी करते हुए कहा। तो अंशिका ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, प्लीज़ डैडी, नो। पहले कहिए अभी आप डैडी से नाराज़ हैं, शान का सवाल सुनकर अब अंशिका ने हंसते हुए कहा, नो डैडी, बेबी डैडी से नाराज़ नहीं है। उसके इतना कहते ही शान ने उसे छोड़ दिया। अंशिका बेड पर पड़ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तो शान ने उसको अपनी गोद में बिठाया, फिर उसको पानी पिलाने लगा। कुछ देर में अंशिका नॉर्मल हुई तो उसने फिर से मुंह फुलाकर कहा, डैडी चीटर है, बेबी डैडी से बात नहीं करेगी। जान, डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जानती हैं आपसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए और कुछ भी नहीं है, पर डैडी आपकी ये विश पूरी नहीं कर सकते। आपके डैडी आपसे इतना प्यार करते हैं, फिर भी आपको मम्मा चाहिए होती है। आपको डैडी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है ना, आपको अपनी मम्मा के पास जाना है, पर अगर आपको मम्मा मिलेगी तो डैडी नहीं मिलेंगे। अब बोलिए कि आपको अभी मम्मा चाहिए, शान अब एकदम गंभीर हो गया था। अंशिका नम आँखों से उसे देखने लगी। वो उसकी बातों से इतना तो समझ गई थी कि अगर मम्मा मिलेगी तो वो डैडी को खो देगी। वो शान के सीने से चाल लगी और सुबकते हुए बोली, नो डैडी, बेबी को मम्मा नहीं चाहिए, बेबी को डैडी के साथ रहना है, बेबी डैडी से बहुत सारा लव करती है, अब से बेबी कभी मम्मा को लाने नहीं कहेंगी, बस आप बेबी को छोड़कर मत जाना। आप तो डैडी की जान है, आपको छोड़कर डैडी कहाँ जाएंगे? चलिए चुप हो जाइए, आप तो ब्रेव डैडी की ब्रेव डॉटर है ना, चलिए रोना बंद करिए, आपके दादू आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसने बड़े प्यार से उसके आंसुओं को साफ किया, फिर उसे गोद में उठाकर बाथरूम में चला गया।
कुछ देर में उसका मुंह धुलवाकर बाहर लाया और नीचे चला गया। नीचे के फ्लोर पर सीढ़ियों के बाद के दो कमरे छोड़कर जो कमरा था, दोनों वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अर्पिता जी पर उनकी नज़र चली गई जो वहीं लगे बेड के पास खड़ी थीं। वहां एक आदमी बेड पर बैठे हुए थे, बिल्कुल शान जैसी शक्ल सूरत, बस थोड़ा रंग मलिन टाउन हो गया था, थोड़े कमज़ोर लग रहे थे, जैसे सालों से बीमार हों। ये सुभाष जी हैं, शान के डैड और सुयश जी के छोटे भाई। सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में उनका आधा शरीर पैरालाइज हो गया था, कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, खुद से उठ बैठ नहीं पाते थे, इसीलिए ज़्यादातर उनके पास नर्स और एक नौकर रहा करता था। शान ने उनके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर कभी कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुई उनकी हालत में। उनका इलाज घर पर ही होता था, बड़े से बड़े डॉक्टर घर आते थे, वो ज़्यादातर इसी कमरे में रहते थे, कहीं भी बाहर जाने से इनकार कर देते थे, उदास से बैठे रहते थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, खामोश रहते थे, जैसे दिल में बहुत बड़ा दर्द जब्त किया हुआ हो। जीने की इच्छा ही बाकी नहीं थी उनमें, पर शान के लिए जिंदा थे। एक अंशिका ही थी जिसके साथ वो खुश हो जाया करते थे, ज़्यादातर अंशिका उनके साथ ही रहती थी। वो अंशिका को ड्राइंग करवाते, स्टोरीज सुनाते, इसी बीच वो नॉर्मल रहते थे, जिससे सबको सुकून मिलता था। शान उनसे मिले बिना घर से बाहर नहीं जाया करता था, उनको खुद ही खाना खिलाता, फिर दवाई खिलाता, क्योंकि वो किसी और से दवाई नहीं खाते थे। आज भी यही हो रहा था, अर्पिता जी ने उन्हें खाना खिलाया, पर दवाई के नाम पर सुभाष जी ने दवाई खाने से इनकार कर दिया। शान के वहां आते ही अर्पिता जी ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, भैया दवाई नहीं खा रहे, अब तुम ही देखो इन्हें। शान उनके पास आ गया, उनके हाथ से दवाई ली और ग्लास लेकर दवाई सुभाष जी के आगे बढ़ा दिया, तो उन्होंने चुपचाप दवाई ली और खाकर ग्लास वापस उसे दे दिया। अर्पिता जी ये देखकर मुस्कुराकर बोली, तुम्हें देखकर ही भैया ने दवाई खा ली, चलो अच्छा है, किसी की तो सुनते हैं भैया, अब तुम इनसे बात करो, मैं खाना लगाती हूँ, जल्दी बाहर आ जाना। शान ने हाँ में सर हिला दिया, वो बाहर चली गई। शान ने अंशिका को नीचे उतारा तो वो बेड पर चढ़ गई और जाकर उनकी गोद में बैठ गई। उसे देखकर सुभाष जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। शान ने अब उनके पास बैठते हुए कहा, डैड, आप क्यों किसी से दवाई नहीं लेते, ऐसे आप कैसे ठीक हो पाएंगे? उसकी आवाज़ में उनके लिए परवाह और फिक्र झलक रही थी। उसकी बात सुनकर सुभाष जी ने उसे देखा और मायूस होकर बोले, हम जीकर क्या करेंगे बेटा, हमारे जीने की वजह तो सालों पहले हमें छोड़कर जा चुकी है, अब तो बस इंतज़ार है कि इस देह से और इस संसार के बंधनों से हमें आज़ादी मिल जाए। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं डैड, क्या मैं आपका कुछ नहीं लगता, क्या आप मेरी खुशी के लिए ठीक नहीं हो सकते? सब डॉक्टर यही कहते हैं कि आप ठीक होना ही नहीं चाहते, जब तक आपकी इच्छा शक्ति साथ नहीं देगी आपका ठीक होना नामुमकिन है। मैं अपने डैड को फिर से उनके पैरों पर खड़े होते बिना सहारे के चलते देखना चाहता हूँ, कि आप अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकते, मेरी खुशी के लिए ठीक हो जाइए। शान की आंखों में नमी तैर गई थी जिसे उसने अंदर ही सुखा लिया। उसकी बातों से सुभाष जी भावुक हो उठे, उन्होंने भारी गले से कहा,
हम बहुत बुरे बाप हैं ना। जब बाप बेटे को संभालता है तब से आप हमें संभाल रहे हैं। हमने अपने किस्मत के दुखों को आपके नसीब से जोड़ दिया, पर हम क्या करें, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि हम फिर से पहले जैसे हो जाएं, पर बेटा ये नामुमकिन है। हमारी जिंदगी थी और अपने साथ साथ वो हमारी जीने की चाह को भी ले गई। अब ये जीवन बोझ लगता है हमें। आप फिर से वही बात लेकर बैठ गए, भूल जाइए ना सब। जिनके लिए आप अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं वो तो आपको सालों पहले छोड़ गई। अब तो वो सुकून से अपनी जिंदगी बिता रही होंगी। वो मेरी माँ नहीं थी डैड, जिन्होंने मेरे डैड को धोखा दिया, अपने 8 साल के बच्चे को छोड़कर चली गई। किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए। वो मेरी क्या किसी की भी माँ कहलाने के लायक नहीं है। जब वो आपको भुलाकर अपनी जिंदगी जी रही हैं, तो आप क्यों उनकी याद में आज तक खुद को तड़पा रहे हैं? वो हमारी कोई नहीं लगती। मेरे लिए आप हैं और आपके लिए आपका बेटा। मेरे लिए ठीक हो जाइए प्लीज। शान का चेहरा दर्द से सराबोर था। वहीं सुभाष जी की आंखों में नमी तैर गई थी। उन्होंने अंशिका को गोद से उतारते हुए कहा, बाहर जाइए, हमें अकेला रहना है। वो खुद से ही लेटने लगे तो शान ने उन्हें अच्छे से लिटाया, फिर अंशिका को देखा जो अपनी नीली नीली आंखों से उसे ही देख रही थी, क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, सुभाष जी को देखा जो उसके तरफ पीठ किए लेटे थे, और फिर मायूस होकर बाहर निकल गया। डाइनिंग एरिया में जाकर वो खामोशी से अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने अंशिका को खाना खिलाया पर एक शब्द नहीं बोला। तो दोनों समझ गए कि अंदर क्या हुआ होगा, क्योंकि हर कुछ दिनों में यही होता था। जब भी इस बात पर सुभाष जी और शान की बात होती तो यही होता था। उसका मूड ठीक करने के लिए अर्पिता जी ने मुस्कुराकर कहा, हम आप दोनों को कुछ बताना तो भूल ही गए। क्या बताना भूल गई आप? हमें भी पता चले कि ऐसी कौन सी बात है जिसे बताते वक्त आप इतना खुश हो गई हैं? सुयश जी ने मुस्कुराकर सवाल किया। तो अर्पिता जी ने शान को देखा, वो भी उन्हें भी देख रहा था। अब उन्होंने आगे कहा, कल हम छाया के साथ मार्केट गए थे, वहाँ हमें हमारी कॉलेज की फ्रेंड मिली। उनकी बेटी की शादी है 4 दिन बाद और उन्होंने हमें सपरिवार आमंत्रित किया है। हम तो सोच रहे हैं बहुत अच्छा मौका है, सालों बाद हमें हमारी दोस्त मिली है, तो हम तो शादी के हर फंक्शन में शामिल होना चाहते हैं। इसी बहाने अपनी दोस्त के साथ वक्त भी बिता लेंगे और उसकी मदद की करवा देंगे। वो अकेली है ना, उसके पति की एक हादसे में मौत हो गई है तो उसे सब अकेले संभालना पड़ रहा है। हम रहेंगे तो उन्हें सहारा मिल जाएगा। आप दोनों क्या कहते हैं? अब उन्होंने दोनों को देखा तो सुयश जी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। बेटी की शादी है तो बहुत काम होगा, उन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी। हम तो कहते हैं आप कुछ नौकरों को भी ले जाइएगा, और अगर पैसों की जरूरत हो तो भी उनकी मदद कर दीजिएगा। वैसे कब की है शादी? कल हल्दी है, फिर अगले दिन मेहंदी और लेडीज संगीत, और फिर शादी। हम सोच रहे थे कि शादी में हम सब चलेंगे, उसे अच्छा लगेगा, अर्पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शान अब तक बिना किसी भाव के सब सुन रहा था। अब उसने उनकी बात खत्म होते ही झट से कहा, बड़ी माँ, आप और बड़े चले जाइएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, और वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? मैं अंशिका के साथ रुक जाऊँगा। मैं नहीं चाहता अभी वो दुनिया की नज़र में आए, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। ठीक है बेटा, पर आप कब तक उन्हें घर में रखेंगे? वो अब बड़ी हो गई हैं, उन्हें स्कूल तो जाना होगा। क्या आप उनका एडमिशन नहीं करवाएंगे? अब सुयश जी ने उससे सवाल किया तो शान ने अंशिका को देखते हुए कहा, अभी एडमिशन में टाइम है, मैं तब तक कुछ सोच लूँगा। आप दोनों खाना खाइए, मेरी फाइनेंशियल्स के साथ मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। इतना कहकर शान ने अंशिका के माथे के चूम लिया, उसे ध्यान रखने का कहा, फिर छाया को कुछ इशारा किया और वहां से निकल गया। टू बी कंटिन्यूड, आगे की स्टोरी अगले चैप्टर में।